भगवान की कृपा से जो कुछ मिल जाता है तो उसको जद्विच्छया उपपन्न कहते हैं, उपन्न माने प्राप्त। और उन्हीं वस्तुओं के प्राप्त होने पर जो व्यक्ति संतोष करता है वो सुख से जीता है, वो सुखी रहता है। जो कुछ भगवान की कृपा से मिल गया, कर्म करने से मिल गया, बिना पाप किए, बिना दूसरों को सताए, जो कुछ मिल गया खाने को, पहनने को, रहने को, उसी में अगर संतोष करता है तो सुखम वर्तते, वो सुख से रहता है। लेकिन नासम तुष्ट त्रिभिर्लोक अजितात्मा प्रसादित है, लेकिन अजितात्मा है, अपने मन को वश में नहीं किया है, तो वह व्यक्ति तो तीनों लोगों की वस्तुएं मिलने पर भी सुखी नहीं होगा यदि वह असंतुष्ट है। वस्तुओं में सुख नहीं है, संतोष में सुख है, ये सिद्धांत भगवान बता रहे हैं। संतोष में सुख है, वस्तुओं में नहीं। इसलिए अगर संतोष है तो सुख ही सुख है, और नहीं संतोष है तो चारों तरफ सोना ही भर दीजिए, सारी सफलता सब कुछ लेके लिए, दुख ही दुख रहेगा। और इतना ही नहीं, वर्तमान में दुख का कारण ही नहीं है असंतोष, असंतोष ही इस जगत में जन्म मृत्यु का कारण है। भगवान बता रहे हैं, तुम सोयम संसृतेर हेतु असंतोष अर्थ कामय, धन और इंद्रिय भोगों में असंतोष यही है जीव के जन्म और मरण का कारण। अयम असंतोष कस्मिन अर्थ कामय संसृतेर हेतु, संसृति एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, फिर जन्म लेना और अनेक दुखों में पड़ना, इसका कारण है असंतोष। इस संसार में जीव जन्म लिया है और भोगों की लालसा उसकी बढ़ी हुई है, अगर यही असंतोष रह गया, भोगने की इच्छा रह गई, तो यही रहना पड़ेगा, इसको भोगाएगी माया। ठीक है, भोगो, इच्छा कर रहे हो, तो जो असंतोष है, भोगने की लालसा है जगत की वस्तुओं को, तो यही है जन्म मरण का कारण, यही रह जाना पड़ेगा। लेकिन जदृच्छया जदृच्छयोपन्न न संतोषो भुक्त है स्मृता, लेकिन स्वाभाविक ही कुछ प्राप्त हो जाए और उसमें व्यक्ति संतोष करे तो मुक्त हो जाता है। वह संतोष करके भगवान का भजन करता है, कहने का मतलब यह है, अब भोगों के लिए व्यग्र नहीं रहता है, संतुष्ट है मन, समय है, भगवान का भजन कर रहा है, तो मुक्त होगा ही निश्चित। भोग अर्थ और काम में जो असंतोष है यही है बंधन का कारण, और संतोष से मुक्ति का कारण। यह यथार्थ सत्य है, जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तो प्रेम से भजन कैसे कर पाएंगे। भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में भगवान को धन्यवाद देते हुए रहे, खाएं पिए, दो चार बच्चे हैं, पत्नी है या अपने स्वजन है, खाने पीने को मिल गया, ऋण नहीं है, जो कुछ भी थोड़ा मिला उसमें संतोष किया और भजन किया तो भगवान निश्चित ही मिलेंगे। इन हाय हाय करने से तो इसी संसार में रहना पड़ेगा। और विशेषकर ब्राह्मण के लिए भगवान कह रहे हैं, जदृक्षा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते, अपने आप बिना प्रयास के जो कुछ मिलता है और उससे जो ब्राह्मण संतुष्ट रहता है तो उसका तेज बढ़ता है, उसका तेज बढ़ता है, मतलब उसका ज्ञान बढ़ता है, भगवान की भक्ति बढ़ती है। लेकिन वही तेज तब प्रसाम्यति असंतोषात अंध सेवा सुसुक्षणी, जैसे आसुसुक्षणी आग, अग्नि को आसुसुक्षणी कहते, संस्कृत के कुछ शब्द स्पेशल आ रहे हैं, आसुसुक्षणी मतलब आग, जैसे आग अंभसा जल से प्रसाम्यति शांत हो जाता, आग प्रदीप्त रहती है, आग पर आप जल डालिए तो बिल्कुल घुस जाए। उसी तरह से ब्राह्मण में यदि असंतोष आया तो उसका तेज गया, समाप्त है, और संतोष है तो तेज बढ़ता है। इस जीवन में हम सबको सीखना चाहिए संतोष करना, संतोष ही सुख है। और संतुष्ट रह करके कृष्ण का भजन करो। और इस तरह संतुष्ट रहकर कृष्ण का भजन करेंगे तो भव सागर से पार हो जाएंगे, फिर यहां नहीं आना पड़ेगा, नहीं रहना पड़ेगा। तो ब्राह्मण का तेज संतोष से बढ़ता है और असंतोष से वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे पानी से आग ठंडी हो जाती है। ये विचार करना चाहिए कितना संतोष हमारे मन में आया है। तस्मात इसलिए हे महाराज बलि, तस्मात त्रीणि पदानि एवं ब्रीडे हम तत्वर्ष भाग, आप वर देने वालों में, दान देने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, पर संतोष ही मुक्ति का कारण है, संतोष ही ब्राह्मण का गुण है। इस कारण से त्रीणि पदानि एवं ब्रीडे, मैं तीन पद ही लूंगा, इससे ज्यादा नहीं। क्या नाटक है भगवान, देखिए मैं तीन ही पद लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। बलि महाराज ने कहा इतने से तुम्हारी जीविका चल जाएगी जीवन भर के लिए। भगवान कहते हैं एतावताय सिद्ध हूं, बस इतने से मैं कृतार्थ हूं, इतने से मैं सिद्ध हूं, मतलब पूर्ण मनोरथ। तीन पद केवल भूमि चाहिए। भगवान के कहने का भाव था कि इतने से मेरे भाई इंद्र का सब मनोरथ पूरा हो जाएगा, अभी हमको क्या जरूरत है। इनकी मां ने तपस्या किया था, पयोव्रत किया था, और मां ने पयोव्रत किया था इंद्र को राजा बनाने के लिए। कभी एतावता एव, बस इतने से ही सिद्ध हो, मैं सिद्ध हो जाऊंगा। वित्तम जावत प्रयोजनम, किसी भी व्यक्ति को उतना ही धन रखना चाहिए जितने से उसका काम चल जाए, जितना प्रयोजन हो। प्रयोजन से अधिक धन रखने पर धन ही क्लेश देने लगता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं चाहता। और ज्यादा धन लेकर क्या करूंगा, मैं उसी फेर में पड़ जाऊंगा। देख रहे ना, धनी लोग धन में ही फंस करके मर रहे हैं, धन के कारण दुखी है। वास्तव में चिंता होती है सरकार न ले ले तो वो न ले ले, ये न ले ले, वो न हो जाए, ऐसा न हो, ये न हो। धन नहीं रहता तो बल्कि सुख से रहो। हाँ, जावत प्रयोजनम, भगवान कहते वित्तम जावत प्रयोजनम, धन उतना ही रखना चाहिए जितना आवश्यकता है। और आवश्यकता का अर्थ क्या है? आवश्यकता का अर्थ है जो हमें से भजन करा सके। ऐसा नहीं कि धन को ही संवारने, बढ़ाने, इकट्ठा करने में हमारा सारा समय चला। इन कथाओं में, भागवत की कथाओं में देखता हूं कि बहुत धनी लोग नहीं आते हैं। यहां बॉम्बे के स्टैंडर्ड्स में देख रहा हूं, सामान्य धनी लोग आ जाते हैं, बहुत धनी लोग नहीं आते। उनसे कृपा की याचना की जाती है, एक दिन आइए कथा में, तो कहते हाँ देखेंगे। देखते रह गए, सात दिन बीत गया, देखेंगे। तो दृष्टि कहीं और है। वास्तव में धन सारे अनर्थों का मूल कारण भगवान बता रहे। वित्तम जावत प्रयोजन महाराज बलि, धन उतना ही रखना चाहिए जितना आवश्यक हो, तो मैं इतने सही कृतार्थ हो जाऊंगा। तो बलि महाराज इतना आग्रह कर रहे थे और मांगो और मांगो, अरे बच्चा मांग नहीं रहा था। तब उनको हंसी आ गई, हंसने लगे। श्री सुखवाच सुखदेव गोस्वामी कहते इतुक्त स हसन्ना वांछांत प्रतिगृहता। बलि महाराज हंसने लगे और कहने लगे ठीक है, वांछांत प्रतिगृहता, अपनी वांछा के अनुसार, इच्छा के अनुसार ले लो। ठीक है, वे नहीं कहे तीन पग ले लो, तुम्हारी जितनी इच्छा हो ले लो। आगे अपने गुरु से बताए मैं कहा हूं कि तुम्हारी जितनी इच्छा हो उतना ले लो, इसलिए इसकी जितनी इच्छा होगी मैं दूंगा। ये बोल रहे, ये नहीं कह रहे ठीक है तीन पग नाप लो। पहले तो बलि महाराज ने कहा कि हमारे यहां बड़े बड़े असुर हैं, हम उनके पैर से तीन पग नपवा देते हैं, वो कई किलोमीटर में चले जाएंगे। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मैं अपने पैर से नापूंगा, हमको छोटा है, हम इसी पैर से नापूंगा, कोशिश करूंगा बढ़ाने की, जितना बढ़ जाए लेकिन इसी से ना। बलि महाराज का दो क्या कोशिश करोगे, एक पग एक मीटर से नहीं बढ़ सकता, कोशिश करे। भगवान ने कहा कि मैं प्रयास करूंगा नापने का, लेकिन अपने इसी पैर से। तो बलि महाराज हंसने लगे और कहे, ये बात ध्यान देने लगे, वांछांत वांछा से चथा वांछा ले लो प्रतिगृहता। और भगवान वामन देव को पृथ्वी दान करने के लिए, मतलब वो भूमि थोड़ी कही है, पूरा पृथ्वी, वामनाय महिम दातुम जगरा है जलभाजन जलपात्र लिए बलि महाराज, स्वयं जल लेकर संकल्प करने के लिए कि मैं देने जा रहा हूं, और भगवान वामन देव के हाथ में जल दिए देने जा रहे थे, जगरा केवल लिए अभी बर्तन। भगवान ये संकल्प करेंगे कि हम ले रहे हैं, और बलि महाराज संकल्प करेंगे हम दे रहे हैं। तो दोनों के हाथ में जल देने के लिए जलपात्र उठाए, तब तक भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई, शुक्राचार्य जी के हृदय में भगवान प्रवेश किए, और वे बलि महाराज की कीर्ति बढ़ाने के लिए बाधक के रूप में सामने आ गए। भगवान की प्रेरणा तो नहीं, तो वह गुरु कभी बाधा दे, भगवान की भक्ति में यह संभव नहीं था। ये सब आगे ये वर्णन किया गया है कि भगवान की ऐसी प्रेरणा थी शुक्राचार्य के हृदय। जब ही बलि महाराज पृथ्वी देने के लिए उद्यत हुए, विष्णवे क्षमा प्रदास्यंतम, विष्णु को भूमि देने के लिए तत्पर हुए बलि महाराज, उसी समय उषना विद्वानों में सिरमौर शुक्राचार्य असुरेश्वर बलि महाराज से इस प्रकार कहे, जानन विष्णु चिकित्सितम, वो जान गए भगवान की चिकित्सा को, कि क्या करना चाहते, वो जान गए कि भगवान संपूर्ण पृथ्वी को लेने के लिए आए हैं। बलि के पहरा पास अब एक इंच भूमि नहीं रहेगी, ना एक पैसा रह जाएगा। तो शिष्य के प्रति स्नेह था ही, इसलिए यहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, शिष्यम प्राह विदाम्बर, कैसे जान गए कि भगवान सब कुछ लेना चाहते हैं, क्योंकि विदाम्बर जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ, बिना किसी के बताए वो विद्वान जान गए कि ये भगवान है, तेज देख करके समझ गए ये भगवान है। और कथा भी सुने थे कि अदिति ने पवव्रत किया है, सब पता लगा लेते थे शुक्राचार्य, कैसे किधर किधर क्या हो रहा है, कूटनीति में बड़े पंडित। भगवान जब भी बोले, भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में चाहे कहीं भी, वो तो बताते हैं कि व्यवहारिक जीवन में शुक्राचार्य की नीति अपनानी चाहिए। बारंबार भगवान कोट किए हैं बृहस्पति जी की नीति और शुक्राचार्य की, लेकिन बृहस्पति जी से अधिक शुक्राचार्य की नीति का कोटेशन दिए। भजन के विषय में और दूसरी बातें हो सकती हैं, लेकिन लोक व्यवहार में शुक्राचार्य की ही उक्ति प्रमाण है। तो शुक्राचार्य अपने शिष्य का धन बचाने के लिए, सारा समाप्त न हो जाए इसके लिए, बीच में बोलने लगे, बर्तन लिए हैं बलि महाराज हाथ में, भगवान के हाथ में जल देने जा रहे थे, अपने हाथ में ही, तब तक शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा, ऐसा वैरोचन साक्षात भगवान विष्णु रेय हे विरोचन पुत्र, जानते हो कौन है, ऐसा वही भगवान साक्षात, ये साक्षात भगवान है, भगवान विष्णु है और अव्यय अविनाशी है, पूर्ण है, इनको कोई धन की आवश्यकता नहीं है, इनको क्या तुम दे सकते, ये साक्षात विष्णु है, भगवान है। और वैरोचन संबोधन कर रहे हैं, विरोचन जैसे ठगा गया था तुम्हारा बाप ब्राह्मणों के द्वारा, ऐसे आज तुम्हारी मति मारी गई, तुम भी अब धोखा खाओगे, बस ब्राह्मण को दान दो दान दो दान दो, इसी में तुम जाओगे। ये साक्षात भगवान है, सदैव स्वर से पूर्ण है, इनको भूमि की क्या आवश्यकता है, ये भगवान है। और तब बलि महाराज ने कहा कि भगवान तो चतुर्भुज हैं और सांवले शरीर वाले, ये भगवान कैसे? तो कहते हैं कस्य पाद अदितेर जातो देवानां कार्य साधक, देवताओं का कार्य साधने वाले भगवान, देवताओं का कार्य साधने के लिए कश्यप जी के द्वारा अदिति के गर्भ से जन्म लिए। सुन लो, तुम्हारे बैरी के घर में जन्म लिए, ये तो दिति के वंश परंपरा में थे, दैत्य थे, और भगवान आदित्य बन कर आए। कश्यप और अदिति का नाम लेकर के शुक्राचार्य सोचते हैं कि बलि भड़क जाएगा, अरे कश्यप अदिति के पुत्र बन कर आए, कश्यप के पुत्र के रूप में आए तो कोई बात नहीं, लेकिन कश्यपात अदिते जाकर कश्यप के द्वारा अदिति के गर्भ से जन्म लिए हैं और देवताओं का कार्य बनाने के लिए आए हैं। बलि महाराज ने कहा देवताओं का क्या कार्य, अब क्यों रोक रहे हैं? तब शुक्राचार्य कहते हैं प्रति श्रुतम त्वे तस्मे जब अनर्थम अजानता न साधु मन ने दैत्याना महान उपगतो अनय, अनर्थम अजानता, तुम अनर्थ को न जान करके इस ब्राह्मण के प्रति विष्णु के प्रति कुछ देने का प्रतिश्रुत कर ली, प्रतिज्ञा कर ली, तुमको अनर्थ का पता नहीं है। क्या अनर्थ होगा? दैत्यों पर महान अनर्थ होने वाला है, महान संकट आने वाला है, मैं इसको अच्छा नहीं मानता, न साधु मन ने। और शुक्राचार्य जी का कहना सही है, अब तक दैत्यों को पाल पोष करके लाए हैं और आज सारा धन एकाएक सब ले लिया जाए तो गुरु कैसे सहन करेगा? जीवन दिए थे, सब पाले थे, पोसे थे, वही स्वर्ग पर विजय दिए थे और आज भगवान आ करके भिखमंगी में ले जाए सब भीख मांग कर ले जाए, तो सावधान करना तो आवश्यक था, जरूरी था। तुमने जो प्रतिज्ञा किया है मूर्खता किया है, तुमको पता नहीं था कि उसके चलते क्या अनर्थ होगा, क्या अनर्थ होगा। तब कहते हैं तो स्थान ऐश्वर्यम श्रीमते जो जस श्रुतम दास्य आच्छिद्य शक्राया माया मानव को हरि, ये माया से ब्राह्मण का वेश बनाए हैं, हरि है, हर लेने वाले, हरने के लिए आए हैं तुम्हारा सब कुछ, ये तुम्हारा स्थान छीनेंगे, इंद्र पद जिस पद पर तुम हो इस समय, ये इंद्र का पद छीनेंगे और स्वर्ग का साम्राज्य छीनेंगे और स्वर्ग में जो धन है सब धन छीनेंगे और तुम्हारा तेज, तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारा ज्ञान तक सब ले लेंगे। नर्वस हो जाओगे, बुद्धि काम नहीं करेगी जब सब छीन लेंगे, तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे और छीन करके भी अपने पास रखते तब भी मैं तुम्हें मना नहीं करता। ये ले करके शक्राय दास्यति, ये शक्र को देने वाले हैं, इंद्र को देने के लिए ले रहे हैं, इसलिए नहीं दो, मत दो। यदि भगवान अपने पास रख ले तो मैं भी कहता ठीक है दे दो सब भगवान, लेकिन दास्यति शक्राय तुमसे छीन करके इंद्र को देंगे, जिस इंद्र से तुम प्राप्त किए हो उस इंद्र को दे देंगे। वास्तव में बलि महाराज के लिए इतना काफी था कह देना, लेकिन कितने धैर्यवान बलि महाराज थे, कितने बड़ा भक्त, कितना बड़ा भक्त थे। अब इतनी पर तो कोई आदमी बदल जाए, भगवान हो चाहे कुछ भी हो, हमारे दुश्मन का साथ दे रहा है तो हम भगवान को छोड़ देंगे, है ना, तुरंत कह देगा। इतना तो कह देता कि मैं तुम्हारा भक्त हूं लेकिन तुम ठीक नहीं कर रहे हो, इंद्र को क्यों देना चाहते हो? तो शुक्राचार्य जी स्पष्ट कहते हैं कि सारा लेकर के और इंद्र को दे दे। तो बलि महाराज कहते हैं ये तो तीन पग भूमि मांग रहे हैं, आप कहते हैं सारा स्वर्ग छीन लेंगे, सारी पृथ्वी ले लेंगे, ये कैसे कहते हैं? ये तो तीन पग भूमि लेने के लिए कहे। तुम कहते त्रिवीर क्रमय रिमान लोकन विश्व काय क्रमिष्य, ऐसा ऐसा दिखाकर कह रहे हैं ये ब्राह्मण कुमार ये साक्षात भगवान है और त्रिवीर क्रमय तीन क्रम में ही उमान लोकान कर्मिष्यति, सारे लोगों को नापने, ये तीन पग में है। विश्व काया, क्योंकि सारा विश्व तो इनके काया के भीतर है। अरे देखने में छोटे लग रहे हैं, बढ़ाएंगे शरीर तब देखना क्या होगा, सारा विश्व इनके शरीर में आ जाएगा। तीन पग में ही सारा नाप लेंगे, छोटा छोटा पैर मत देखो। तब वे कहते हैं अगर नाप लें तो नाप लें, इससे क्या होगा। मान लीजिए तीन पग में सारा लोक नाप लें तो नाप लें, तो इस पर कहते हैं तो सर्वस्वम विष्णवे दत्वा मुंडवर्ती ससे कथन। अरे मुंडे आगे का भी कुछ देखो, विष्णु को सर्वस्व देख करके जियोगे कैसे। अरे खाने पीने के लिए चाहिए ना, राजा हो तुम, एकाएक इतना गरीब हो जाओ कैसे रहोगे। सर्वस्वम विष्णवे दत्वा, विष्णु को सब कुछ दे करके कथन वर्ती ससे कैसे जियोगे, कैसे रहोगे इस दुनिया में। ठीक है, नापने के लिए तो कहते हो कि नाप लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, क्या तुम्हारे पास रह जाएगा। भगवान चुपचाप सुन रहे हैं गुरु शिष्य का झगड़ा। भगवान इसमें बिल्कुल चुप हो गए और बार बार दिखाकर शुक्राचार्य कह रहे हैं कि इस विष्णु को सब कुछ दे करके कैसे रहोगे, क्या खाओगे, क्या जियोगे, तुम्हारी पत्नी है और सब है, मैं भी गुरु हूं, कहां जाऊंगा। वो कहने का भाई है। कैसे सब व्यवहार चलेगा। तब कहते आखिर जब प्रतिज्ञा किया हूं तो प्रतिज्ञा तो पूरा करना ही चाहिए, प्रतिश्रुतम का निर्वाह तो करना ही चाहिए। मैं कह चुका देने के लिए, आपके सामने ही बोल रहा था ना, आप सब सुने ना, मैंने प्रतिज्ञा कर लिया कि दूंगा। तब कहते ठीक है प्रतिज्ञा कर लिया, लेकिन तुम प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे प्रतिज्ञा निभा करके भी नहीं, प्रतिज्ञा तुम दोगे भी फिर भी तुम जो वचन दिए हो पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये दो पग में ही सारा नाप लेंगे, तीसरे पैर के लिए तुम्हारे पास जमीन नहीं है, तो वैसे ही तुम्हारी बात झूठ होगी, झूठा रहना ही है तुमको। इसीलिए झूठ जब रहना ही है तो तुम कुछ बचा करके झूठ रहो, सब कुछ दे करके झूठ क्यों रहो। अंततः तुम वचन पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्रमतो गान पदय के न द्वितीय न दिगम भी हो। जब कृष्ण नापेंगे, विष्णु जब नापेंगे इस भुवन को, तो एक पदा गांव, एक पैर से पूरा नीचे के तल तल बीतल आदि को नाप लेंगे, भूमि को नीचे, और द्वितीय न दिगम, दूसरे चरण से स्वर्ग को नापेंगे, खम चकायन महता, और आकाश को विशाल शरीर से नाप लेंगे। तो तारतीय से कुतो गति, तृतीय पैर के लिए तुम्हारे पास क्या है, कुछ है, कहां दिमाग तुम्हारा गया। दो पग में ही सारा संसार समाप्त होने वाला, तो तृतीय पग के लिए जमीन नहीं रहेगी। तो उस तरह से निष्ठम तुम नरके बनी, अब तुमको नरक में गिरना ही है, क्योंकि तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाओगे, दान दे करके भी वचन पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए निष्ठम तुम नरके मन, तुम्हारी नितराम स्थिति में तो नरक में देख रहा हूं, तुम तो नरक में जाओगे, इतना बड़ा दान करके नरक में रहना पड़ेगा, क्योंकि हे प्रदातु प्रतिश्रुत, तुम प्रतिज्ञा करके नहीं दे पाओगे, इसलिए नरक में रहना पड़ेगा। प्रतिश्रुत सुयो निश प्रतिपादित तुम भगवान, प्रतिज्ञा किए हो कि तीन पग भूमि देंगे, लेकिन तीन पग नहीं दे पाओगे, उसके लिए तुम असमर्थ हो, अनिश हो, इसलिए तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, देने के बाद भी। तुम सीधा कह दो कि मैं तुमको दे दूंगा थोड़ी सी भूमि, लेकिन मैं तुम्हारे पैर से नहीं दूंगा, बस। और जब नरक में ही जाना है तो नहीं दोगे तब भी नरक में जाओगे, और दोगे तब भी नरक में जाओगे, तो इसलिए बचा करके नरक में जाओ, जी करके खा पी करके कुछ दिन तब नरक में जाओ। ये देखिए ये कोई धर्म है बताइए। मान लीजिए आप किसी को ₹300 देने की प्रतिज्ञा किए और कदाचित आपके पास 100 नहीं है, 200 दिए, तो कोई आदमी कहे कि जब 300 नहीं दे सकते तो 200 भी मत दो, ये कोई धर्म है? अरे भाई कम से कम 200 तो दे दो, 100 नहीं है तो उसमें बोले महाराज का क्या दोष रहेगा। लेकिन गुरु जी सिखा रहे हैं कि तुम उसमें से बचाओ, 200 में भी दो, ये नहीं कहता मत दो, लेकिन पूरे अपने परिवार के लिए आगे के लिए सब बचा कर करो। अब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को इतने थोड़े देना चाहिए, ब्राह्मण आए और राज ले लेना अपने ठीक से तो ठीक नहीं है, इसको दे दो, दो चार बीघा भूमि दे दो, कुटिया बनाए, गाय रखे, अपने वेद पढ़े, ये थोड़े साम्राज्य का अधिकारी है। और भगवान को तो चाहिए नहीं, भगवान दूसरे के लिए मांग रहे हैं, तुम्हारे साथ छल किया जा रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, न साधु मन में शुरू में ही उन्होंने कहा। तो बलि महाराज कहते हैं कि गुरु जी भले मैं नरक में जाऊंगा दान देने पर, लेकिन कीमत तो रहेगी संसार में मेरी कि मैंने दान दिया, मैंने ब्राह्मण के साथ झूठा व्यवहार नहीं किया, मेरा जस तो रहेगा। तब कहते न तद दानम प्रशंसन्ति जैन वृत्तिर विपद्यते, जिस दान को करने पर अपनी जीविका ही संकट में पड़ जाए, सब दुकान कारखाना आदि सब बिक जाए, तो उस दान की प्रशंसा नहीं करते हैं विद्वान लोग। इतना दान दे दो कि आज ही सारा रोजगार ठप हो जाए, पूरा उठा करके दे दो, इस दान की प्रशंसा विद्वान लोग नहीं करते। ये बात बहुत महत्व की कह रहे हैं, सीखना चाहिए वास्तव में, नहीं भावुकता में आकर के दे दिया और बस इसके बाद फक्कड़ बाबा हो गए और घूम रहे हैं, कभी कभी रोते हैं और जिसको दान दिया है उसी से केस लड़ना चालू करते है ना, चलता है ना, फिर तुम भावुकता में आकर के पूरा दे दिए सेंटिमेंट में। ऐसे ही लोगों के लिए शुक्राचार्य की बाणी वास्तव में अमृत है, उस दान की प्रशंसा नहीं की जाती है जिसमें अपनी पूंजी अपना रोजगार ही ठप हो जाए, समाप्त हो जाए, जिन वृत्ति विपद्यते जिससे जीविका ही विपत्ति में पड़ जाए, ऐसे दान की प्रशंसा विद्वान लोग नहीं करते। अपनी जीविका अच्छा से रखे, खाए कमाए और रखे, उसमें से थोड़ा दान दे दे, ये धर्म। क्यों इसका कारण एक और बता रहे हैं कि दानम यज्ञस तप कर्म लोके वृत्ति मतो जत, क्योंकि आगे भी जो व्यक्ति कमाता रहता है, जिसका रोजगार चलता है, वही दान करता है, यज्ञ करता है, तप करता है, और कुआं खुदवाना या जीवों की सेवा करने सब कर्म करता है, उसी का चित्त एकाग्र रहता है, तप का अर्थ एकाग्र, जिसका काम ठीक से चल रहा है, धन आ रहा है, वही देखा जाता है कि शांति से रहता है, नहीं धन का अभाव हो, खाने पीने का अभाव न हो तो क्या चित्त को एकाग्र करेगा। यही मन में बसा हुआ है कि आज परिवार का भोजन कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, उतने पैसे की जरूरत हो गई कहाँ से आएगा, हमेशा इसी चिंता में रहेगा तो क्या यज्ञ करेगा, क्या दान करेगा, क्या तप करेगा। तो वृत्ति मत, जिस व्यक्ति की जीविका ठीक से चल रही है, धन का आगम है, वही दान करता है, यज्ञ करता है, तप करता है, बड़ा बड़ा कर्म करता है। तो ये बताओ कि आज ही भर तुमको दान करना है कि आगे भी करना है? आगे भी दान करना है ना, और लोग भी दूसरे ब्राह्मण भी आएंगे कि नहीं तुम्हारे पास, ये क्यों ही आया है और भी आएंगे ना मांगने वाले, सुनेंगे कि बलि इतना दानी है, तो उस दिन क्या होगा, उस दिन तो दान नहीं दे पाओगे। तो जब रहेगा अपने पास तो दान आगे भी देते रहोगे, देते रहो, हर एक बार दान देना पड़ेगा ना, इसलिए रखो बचा करके और ब्राह्मण को ब्राह्मण जैसा दे दो, थोड़ा दे दो, क्यों कह दिए जो भी मांगो मैं दे दूंगा, और ट्रिक नहीं समझ रहे हो, छोटे छोटे पैर से कह रहे हैं कि लेंगे, अभी बुद्धि नहीं खुली, बात उतना अच्छा बोले तुम खुश हो गए और अब कहते हो कि हाँ हाँ ठीक है नाप लीजिए नाप लीजिए। अब नहीं समझ रहे हो, ये बहुत सुंदर नीति है कि उसी बैंक की प्रशंसा की जाती है जिसमें अपना काम धंधा चलता रहे, पैसा रहे, और आज एक ब्राह्मण आया कल दूसरा आएगा तीसरा आएगा वो आएगा, सबको देना है ना थोड़ा थोड़ा, मेरे को ही देकर कर बाकी के सामने हाथ पसार देना नहीं है ये नहीं है, तो इसमें तो जस जाएगा, इसमें क्या कीर्ति होगी। तुम कहते हो कीर्ति होगी दान देने से, और नीति सिखाते हैं। देखिए गृहस्थों के लिए बहुत सुंदर नीति है, धान को पांच भाग में बांट करके जो व्यक्ति भोगता है वो इस लोक में भी सुखी रहता है और परलोक में भी, ये शुक्राचार्य की नीति है। तो वास्तव में अमर वाक्य है, प्रत्येक व्यक्ति को सीखना चाहिए। तो पांच भाग में धान को बांटना चाहिए, धर्माय जस सेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंच भाग भजन भूतम यहा मित्र चमोदते। धर्म के लिए कुछ धन खर्च करना चाहिए, पुण्य के लिए कि आगे हमको स्वर्ग मिले, आगे हमारा जीवन अच्छा हो, भगवान के धाम में जाए, कुछ धर्म में पैसा खर्च करना चाहिए। कमाई में से कुछ पैसे जरूर धर्म के लिए रखने चाहिए, खर्च करने चाहिए धर्म के लिए, कुछ पुण्य के लिए। पुण्य कमाएंगे तब आगे का जीवन सुखी होगा। आज जो दान देते हैं तो पुण्य के लिए देते हैं, भाई पुण्य रहेगा हमारा आगे जीवन सुखी होगा। पुण्य के पास वही है जो हम लोग दिए हैं पूर्व जन्म में, तो इसको धर्म कहते हैं, भगवान के भजन के लिए और भी पुण्य कमाने के लिए जस से, और कुछ पैसा जस के लिए खर्च करना चाहिए। इस लोक में नाम हो कि अच्छा व्यक्ति है दान देता है, कुछ गरीबों को देने पर और कुछ कार्य करने पर जस मिलता है, जसस्वी बनकर रहना चाहिए। और कुछ पैसा अर्थ है पूंजी रखनी चाहिए व्यापार के लिए, आगे कमाने के लिए पैसा है, इसको पूंजी को क्या कहते हैं इंग्लिश में है? अच्छा, तो इसको रखना चाहिए क्योंकि पैसा पैसे को कमाता है। ऐसा नहीं कि आज आया बस सब उड़ा पड़ा कर खत्म कर दिया, पैसा रखना चाहिए आगे इमरजेंसी के लिए, पैसा कमाने के लिए। और कमाया कुछ अपने लिए, अपने लिए काम कर थे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, घर बनाने के लिए, फर्नीचर लाने के लिए, बेड लाने के लिए, और भी कोई उत्सव आ गया बीच में, उत्सव में स्पेशल कपड़ा खरीदेंगे या और करेंगे, उत्सव मनाएंगे खाएंगे पिएंगे। वो जो धर्म के लिए हुआ उसमें तीर्थाटन आदि आ जाएगा। और कमाए का से लड़कों का विवाह करना है, बच्चों का विवाह करना है, और अपने लिए रखना है, और स्वजना है, और स्वजन जो हम पर आश्रित हैं, अपने पुत्र के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने असहाय भाई के लिए, अपने दीनहीन माता पिता के लिए, इन सबके लिए धन रखना चाहिए। विचार करके और पांच भाग में बांटना चाहिए, बराबर बराबर बांटे ये नहीं कहा जाता है, लेकिन इन पांचों के लिए जरूर रखना चाहिए। तो तुम केवल धर्म के लिए ही दे दोगे, ये सब स्वजन आदि कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे। वास्तव में ठीक बात, वहां तो साक्षात भगवान थे, इसलिए शुक्राचार्य की नीति गलत सिद्ध हो रही थी, क्योंकि भगवान को देने पर तो भगवान जिम्मेदार हैं। वहां दूसरी बात है, लेकिन लोक व्यवहार में शुक्राचार्य की नीति ही मान्य है। देखना चाहिए ना कि हमारी पत्नी है, हमारा बच्चा है, हमारी लड़की है, हमारा भाई है, माता पिता हैं, और भी स्वजन ऐसे होते हैं जो कुछ कमा नहीं पाते हैं, तो उनके लिए कुछ रखा जाता है। ये सब देख करके तब धन खर्च करना चाहिए, ये सब विचार कर लो और उसके बाद इसको भी दो कुछ दो और भगाओ इसको यहां से कौन घास ऐसा रूखा शब्द है। शुक्राचार्य जी नहीं बोल रहे हैं, वो भी एक भक्त हैं, लेकिन शिष्य के प्रति ममता भरी हुई है, इसका धन बचना चाहिए, भगवान प्रेरणा दे रहे थे। तब बलि महाराज ने कहा कि गुरुदेव, मैं सब कुछ कर सकता हूं लेकिन मुझसे झूठ बोलने के लिए मत कहिए। हम मेरे सामने मुझे धन नहीं दिखाई दे रहा, मेरे सामने मेरा वचन दिखाई दे रहा है और उसी ब्राह्मण कुमार के सामने बात हो रही है। उसको और कहो तो और मांगो और बेचारा केवल तीन पद मांगा, उसमें भी बाधा आ गई। बलि महाराज कहते हैं, अब मैं वचन नहीं बदल सकता हूं, कैसे मैं झूठ बोलूं, सत्य कैसे छोड़ूं। तो शुक्राचार्य कहते हैं, सुनो, मैं ऋग वेद से तुम्हें कुछ ऋचाएं सुनाता हूं, शास्त्र से। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको समझ लो, तब सत्य का पालन करो। बहुत महत्वपूर्ण वेद के ऋचा उद्धृत कर रहे हैं, सबसे प्रमाण है वेद। अत्रापूर्वृचर्गीतम श्रेणु में असुर सप्तमां, हे असुर श्रेष्ठ बलि, सुनो, इस विषय में सत्य क्या है, झूठ क्या है, मैं ऋग्वेद से कुछ श्लोक सुना रहा हूं। सत्य क्या है, सत्यम ओम इति जप प्रोक्तम, जो ओम शब्द है, ओम अर्थात अनुकूल भाव से अंगीकार करते हुए, ठीक है मैं दूंगा, ओम ददामि, इसको ओम शब्द कहते हैं। ओम शब्द ठीक न के विरुद्ध है, किसी को न कह दीजिए और किसी को ओम कहिए तो ओम का अर्थ ठीक है, आपको मैं दूंगा, ये अर्थ ओम का इतना मतलब है लोक व्यवहार, और न का अर्थ नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं। तो शुक्राचार्य कहते हैं वेद के अनुसार, सत्यम ओम इति जत प्रोक्तम, जत ओम इति प्रोक्तम तत् सत्य, ओम मैं दूंगा इसको सत्य कहा गया है, और जब न इति आहार मृतम तब, और कोई कहे कि नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है, इसको असत्य कहा गया है, वेद कहता है तो ठीक है। तो बलि महाराज ने कहा तो ठीक है, तो मैं दूंगा, मैं सत्य बोला हूं और बोलूंगा। तो कहते नहीं, सुनो आगे वेद क्या कहता है, सत्यम पुष्प फलम विद्यात आत्मवृक्ष से गीयते, सत्य बोलता है व्यक्ति कैसे, शरीर से, शरीर रहेगा तब तो तुम बोलोगे, तो जो सत्य है वह है इस शरीर रूपी वृक्ष का पुष्प है और फल है, लेकिन जब शरीर ही नहीं रहेगा, वृक्ष ही नहीं रहेगा, तो क्या उसमें सत्य का फल लगेगा। इसलिए झूठ बोल करके भी शरीर को पोषना चाहिए, शरीर का पालन करना चाहिए, शरीर को जिलाने के लिए कुछ झूठ बोलना पड़े तो कोई बात नहीं, क्योंकि यह शरीर स्वयं अपने आप में झूठा है, शरीर सत्य है ही नहीं। इसमें लिखते हैं अनृतम मूलम आत्मा, आत्मा का मूल है झूठ, अनृत, वैसे शरीर है कि वास्तव में झूठा है। तो शरीर के लिए यदि कुछ असत्य बोलना पड़े तो यही सत्य है। कहने का आशय यह है कि शरीर को चलाने के लिए, संसार में परिवार चलाने के लिए वेद कहता है कि कुछ झूठ बोला जा सकता है। उदाहरण देते हैं कि जो व्यक्ति झूठ बोलना पूरा छोड़ दिया वह उसी तरह से सुख जाएगा जैसे जिस वृक्ष का मूल उखड़ गया हो तो वो गिर जाता है और सूख जाता है। इतना तक बता रहे हैं। तब जथा वृक्ष मूल मूला, जैसे वृक्ष का मूल ऊपर कर दिया जाए, उखाड़ दिया जाए तो सुस्यति उद्वर्तते, वो गिर जाता है और सूख जाता है, अचिराद एवं नष्टा नंतम, इस प्रकार से जिस व्यक्ति का असत्य नष्ट हो गया है, सभ्य आत्म सुस्ते न संशय, जो व्यक्ति नियम ले लिया है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है तो वह बहुत जल्दी ही सूख जाएगा, उसके पास कुछ नहीं रहेगा। कोई भी आए और पूछे आपके पास कुछ पैसा है, हाँ है हमको इतना चाहिए, ठीक है, तो कितना भी पैसा उसके पास रहेगा, पता लग जाए भिखमंगों को कि वो केवल मांगने से ही दे देता है तो आएगा और सुख जाएगा, वास्तव में उसके पास एक पैसा नहीं रहेगा। इसलिए कोई आए मांगे आप हमको इतना मदद कर दीजिए तो कहना चाहिए नहीं इस समय पैसा नहीं है मेरे पास। सब समय नहीं, शुक्राचार्य आगे बता रहे हैं कभी कभी अमृत बोलना चाहिए, नहीं तो वो व्यक्ति सुख जाएगा, जीवित नहीं रह सकता संसार में। अब करके कोई तो देख लेना, जो एकदम नियम ले लिया मुझे झूठ बोलना ही नहीं। अच्छा, झूठ नहीं बोलने का मतलब यह है कि मुझे मना नहीं करना है, जो मांगे मैं देता रहूंगा। तो आ करके घर द्वार कुर्ता तक मांग लेंगे लोग, तो उस दशा में तो सुखना ही पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। एवं नष्टा मृतः, जिसका अमृत नष्ट हो गया है, अर्थात जो झूठ कभी नहीं बोलता है, वो तो शब्द शिष्य न संशय, इसमें संशय नहीं, सुख जाएगा, नहीं चलेगा, नहीं जिएगा इस संसार में। किसी के पास पैसा कुछ रहता है तो झूठ बोलने से रहता है, सच बोलने से नहीं। मतलब हाँ दूंगा यह कहने से नहीं रहता। इसको और श्लोकों से पुष्ट कर रहे हैं, कहते हैं पराग रिक्तम पूर्णम व अक्षरम जब तदोमुक्ति। जो पूर्ण शब्द है, अंगीकारात्मक हाँ शब्द है, मैं दूंगा, यह धन को दूर कर देता है पराग, और रिक्तम व्यक्ति को खाली कर देता है, और अपूर्णम अपूर्ण कर देता है, खाली कर देता है। या तो अपूर्ण करेगा या रिक्त करेगा, धन को ही दूर कर देगा। कितना धन छिपा करके रखा जाता है तब बचता है, समझे? नहीं तो मांगने वाले तो कितना घूम रहे हैं और सबसे कहते जाए हाँ ठीक है, तब तो एक सप्ताह भी नहीं लगेगा सारा धन खर्च होने में, खत्म होने में। तो ये जो शब्द है बड़ा खतरनाक है, हाँ ये हाँ शब्द बहुत खतरनाक है। इसमें शुक्राचार्य जी कह रहे हैं तो पराग रिक्तम अपूर्णम, ये अक्षर जो है ये खाली कर देता है, धन को दूर कर देता है, और नहीं दूंगा ये शब्द बहुत अच्छा है। जब किंचित उन्नति ब्रुवर्तन रिचेत अभिमान, और जो व्यक्ति हमेशा हाँ कहता रहता है वो रिचेत खाली हो जाता है, और इसमें भी भिख मांगने को हाँ हाँ करता जाए तब तो उसकी मांग को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। भिखमंगा कुछ भी मांग सकता है, सब कुछ ले लेगा, ना अपने पास कुछ रह जाएगा ना उसका मन भरेगा, वो उसको भी पूरा नहीं कर पाएंगे। वो भी कहेगा अभी एक कमी रह गई, अभी एक कमी रह गई। आजकल मैं देखा हूं किसी को गोदान कीजिए, वृंदावन में देखा हूं गोदान कीजिए तो कहता है उसके लिए साल भर के लिए भूसा दे देते तो अच्छा होता। अरे भूसा भोजन गाय का चाहिए, उसको गोदान कर दीजिए और भूसा का प्रबंध कर दीजिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर के लिए गाय के लिए भूसा दे देते हैं, भूसा दे देते हैं पैसा देते हैं, और पैसा वो लोग खा जाते हैं, भूसा गाय को मिलता नहीं। ऐसा देखा गया है, देखिए बात कह रहे हैं, बस हाँ करते जाइए, हाँ कीजिए तो बस सारा खाली हो जाएगा। और भिक्षुक से कभी नहीं कहना चाहिए कि हाँ मेरे पास है और तुम आओ मांगो, तब तो लाइन लग जाए। ये जो ना शब्द है बहुत अच्छा है, अथव तो पूर्णम अभ्यात्म, यह शब्द पूरा रखता है व्यक्ति को, ना कहते रहिए तो बस। लेकिन सब समय ना नहीं करना चाहिए, ये शुक्राचार्य कह रहे हैं ये अभ्यात्म, ये ना कहना धन को इधर लौटाता है। आप कहिए कि सब काम तो हो गया है, थोड़ा सा कमी रह गई है, तो ठीक है आप इसे पूरा कर लीजिए, लोग देखते हैं। मांगने वाला यही कहता है कि हमको इस चीज की कमी है, ये कमी है, कमी है, धन आता है, और ये कहने लगे कि हमारे पास है तब तो जाना चालू हो जाएगा। तो यह अभ्यात्म का अर्थ है कि धन लाता है ना कहना। तो बलि महाराज ने कहा कि इसका अर्थ है कि सब समय ना कह दिया जाए, तो कहते नहीं नहीं सर्वम लुप्त नृतम ब्रिया सब दुष्कृति श्वसन मृत, जो हमेशा ना कहता रहता है, नहीं देता है, वो तो सांस लेता हुए ही मरा हुआ है वास्तव में, उसमें तो जान ही है। सब समय ना नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ना करना चाहिए। अब कोई भी मांगे, स्त्री मांगे कुछ हमको ये चाहिए तो कह दे ना नहीं है, बेटा मांगे पढ़ाई के लिए तो ना नहीं है, तो मरा हुआ है बिल्कुल, कभी भी ना है ना है ना है। वो शोषण मृत, सांस भर चल रही है लेकिन मरा है, वो किसी काम का नहीं है। हमेशा ना नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ना करना चाहिए। समय पर असत्य बोल देना, उचित समय पर असत्य बोल देना निंदनीय नहीं। आगे का श्लोक में बताया गया, स्त्री से उन्वर में विवाहे चाहे वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम मानवतम से जुगुप्सितम। कहां कहां असत्य बोल देने निंदनीय नहीं है बता रहे हैं। ध्यान रखना चाहिए कि असत्य बोलना धर्म नहीं है, धर्म नहीं कहा जा रहा है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में असत्य बोलना निंदनीय नहीं है। उन दोनों में अंतर है। स्त्री से स्त्रियों में कभी कभी असत्य बोल देना असत्य नहीं, निंदित नहीं, ठीक है। इसका अर्थ है स्त्री को प्रोत्साहन दे करके उसको अपने वश में रखने के लिए झूठ बोला जा सकता है। प्रोत्साहन देने के लिए स्त्री की बहुत मांग होती है, जितनी उसकी मांग होती है उतना कोई पूरा नहीं कर सकता, इसीलिए उसको प्रोत्साहित करते हो, ठीक है आगे दूंगा, ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, ऐसे प्रोत्साहित रखना चाहिए जिससे वो खुश रहे और बस में रहे। नहीं बगावत कर देगी तो गृहस्थी चलने कठिन हो जाएगा। नहीं हमको ये नहीं दे रहा है, हमको ये नहीं दे रहा है, ऐसा है वैसा है। तो सब समय झूठ की बात नहीं कही जा रही है, लेकिन कभी मान लीजिए पति की शक्ति नहीं है देने की या और कुछ कहने की और कुछ करने की, तो कभी कभी झूठ बोला जा सकता है। मैं अमेरिका में सुना, एक व्यक्ति कहा, मैं कुछ ऐसे बात कर रहा था तो एक व्यक्ति कहा कि महाराज यहाँ पर अपनी पत्नी को 10-20 बार दिन भर में कहना पड़ता है कि आई लव यू, ये कहना पड़ता है। मैं सुनकर आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन कई लोगों से पूछा तो कहे हाँ हाँ बिल्कुल सत्य है, पूछो तो सैकड़ों बार कहते हैं। और वो पत्नी सुनना चाहती है, पति कहता रहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू, तब वो खुश रहती है। और एक घंटे में ही फिर बासी हो जाता है कहना, फिर नया कहना नहीं आई लव यू ऐसे बोलते हैं, तब जाकर के खुश रहती है, वो कहना पड़ता है। वास्तव भले लव करे या ना करे, लेकिन कहना चाहिए।